हर युग में तुम जैसों को आना पड़ेगा, हर युग में तुम जैसों को आना पड़ेगा। गुमराहों के हमराही, गुमराहों के हमराही होना पड़ेगा। हर युग में तुम जैसों को आना पड़ेगा, हर युग में तुम जैसों को आना पड़ेगा।
ओशो, never born, never died, only visited this planet Earth between December 11, 1931 to January 19, 1990।
यह संदेश ओशो की समाधि पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। 19 जनवरी 1990 में सायं 5 बजे ओशो शरीर छोड़कर महाप्रयाण कर गए। 10,000 शिष्यों और प्रेमियों ने उनकी आखिरी विदाई का उत्सव संगीत, नृत्य, भावातिरेक और मौन में मनाया। ओशो के अस्थि फूल का कलश च्वांगसू हॉल में निर्मित संगमरमर के समाधि भवन में स्थापित किया गया।
नमस्कार मित्र, स्वागत है आपका ओशो के शाश्वत चेतना जगत में। शाश्वत चेतना यानी जन्म और मृत्यु के पार का जगत। ओशो प्रेमी 19 जनवरी को ओशो डे के नाम से ओशो का महाप्रयाण दिवस मनाते हैं।
साधना पथ पत्रिका में संपादक शशिकांत सदैव लिखते हैं, ओशो किसी शरीर का नाम नहीं, एक अवस्था है, एक स्थिति है। बुद्धत्व की ऐसी स्थिति, ऐसी घटना जिसका न तो कोई समय से संबंध है, न ही जन्म मृत्यु से कोई नाता, जो थी, जो है और जो सदा रहेगी। चेतना की ऐसी ही दशा का नाम है ओशो, जो न कभी जन्मती है और न कभी मरती है। शरीर में रहती जरूर है, परंतु शरीर के साथ विदा नहीं होती, बस सदा विद्यमान रहती है और विचरण करती है इस धरा पर, हर कण में, हर क्षण में, जिसका अनुभव ही उसका एकमात्र प्रमाण है।
touch me deep inside. Today the time is right to let your silence in, oh sure. I'm opening my heart. Today the time is right to let your love inside, oh sure.
मैं बड़ी उलझन में हूं। 30 अक्टूबर को मेरी प्यारी छोटी बहन ज्योति का देहांत हो गया। मैं बहुत दुख और परेशानी महसूस कर रहा हूँ। ध्यान तथा प्रवचन सुनने से थोड़ी सी शांति की अनुभूति होती है, परंतु इतने सालों से प्रेम एवं ममत्व होने के कारण रोम रोम में उसकी याद सताती। ऐसे संयोग में मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु आप कृपया कुछ मार्गदर्शन देने की अनुकंपा करें। कबीर, जाना है और सबको जाना। हम सब पंक्तिबद्ध जाने को तैयार खड़े, कब किसका बुलावा आ जाए। बहन गई तुम्हारी, चोट लगी तुम पर। चोट इसलिए लगी कि तुमने ये मानकर जिंदगी चलाई थी जाएगी नहीं। बहन के जाने से चोट नहीं लगी, तुम्हारी मान्यता भ्रांत थी, मान्यता के टूटने से चोट लगी। काश तुमने जाना ही होता कि सबको जाना है तो चोट न लगती। तुमने झूठी मान्यता बना रखी थी कि बहन कभी ना जाएगी। किसी अचेतन में चुपचाप तुम इस भाव को पालते पोसते रहे थे कि बहन कभी ना जाएगी। इतनी प्यारी बहन कहीं जाती, लेकिन सबको जाना है। अब तुम सोचते हो कि बहन के जाने के कारण तुम विक्षुब्ध हो, तो फिर गलत सोच रहे हो। धारणा टूट गई इसलिए विक्षुब्ध हो, तुम्हारी मान्यता उखड़ गई इसलिए विक्षुब्ध हो। ये बहन का जाना तुम्हारे सारे तारतम्य को तोड़ गया इसलिए विक्षुब्ध हो। अब भी सोचो, अब भी जागो, तुम्हें भी जाना है। पिता भी जाएंगे, माँ भी जाएगी, भाई भी जाएंगे, मित्र भी जाएंगे, सभी को जाना है। बहन तो जैसे राह दिखा गई, धन्यवाद मानो उसका, अनुग्रह स्वीकार करो कि अच्छा किया कि तुम गई और हमें चेता गई। तो जाने की तैयारी हम करें। दुनिया में दो तरह की शिक्षाएं होनी चाहिए, अभी एक ही तरह की शिक्षा है और इसलिए दुनिया में बड़ा अधूरापन है। बच्चों को हम स्कूल भेजते, कॉलेज भेजते, यूनिवर्सिटी भेजते, मगर एक ही तरह की शिक्षा है वहां। कैसे जियो, कैसे आजीविका अर्जन करो, कैसे धन कमाओ, कैसे पद प्रतिष्ठा पाओ, जीवन के आयोजन सिखाते हैं, जीवन की कुशलता सिखाते हैं। दूसरी इससे भी महत्वपूर्ण शिक्षा है और वह है कैसे मरो, कैसे मृत्यु के साथ आलिंगन करो, कैसे मृत्यु में प्रवेश करो। वह शिक्षा पृथ्वी से बिल्कुल खो गई, ऐसा अतीत में नहीं था। अतीत में दोनों शिक्षाएं उपलब्ध थी। इसलिए जीवन को हमने चार हिस्सों में बांटा था। 25 वर्ष तक विद्यार्थी का जीवन, ब्रह्मचर्य का जीवन, गुरु के पास बैठना, जीवन को कैसे जीना है इसकी तैयारी करनी, जीवन की शैली सीखनी, फिर 25 वर्ष तक गृहस्थ का जीवन जो गुरु के चरणों में बैठकर सीखा है उसका प्रयोग, उसका व्यवहारिक प्रयोग। फिर जब तुम 50 वर्ष के होने लगो तो तुम्हारे बच्चे 25 वर्ष के करीब होने लगेंगे, उनके गुरु के गृह से लौटने के दिन करीब आने लगेंगे। अब बच्चे घर लौटेंगे गुरु गृह से, अब उनके दिन आ गए कि वे जीवन को जिए। और जब बच्चे घर आ गए, फिर भी पिता और बच्चे पैदा करते चला जाए तो ये अशोभन समझा जाता था, ये अशोभन है। अब बच्चे बच्चे पैदा करेंगे, अब तुम इन खिलौनों से ऊपर उठो। तो 25 वर्ष वानप्रस्थ, वानप्रस्थ का अर्थ बड़ा प्यारा है, जंगल की तरफ मुंह इसका अर्थ होता है। अभी जंगल गए नहीं, अभी घर छोड़ा नहीं, लेकिन घर की तरफ पीठ और जंगल की तरफ मुंह, ये वानप्रस्थ का अर्थ होता है। चले चले तैयार, जैसे कभी तुम यात्रा पर जाते हो, बिस्तर बोरिया सब बांध कर बस बैठे हो कि कब आ जाए बस, कि कब आ जाए गाड़ी। ये वानप्रस्थ, 25 वर्ष तक वानप्रस्थ, ताकि अगर तुम्हारे बेटों को तुम्हारी कुछ सलाह की जरूरत हो तो पूछ ले, अपनी तरफ से सलाह मत देना। वानप्रस्थ स्वयं सलाह नहीं देता, लेकिन बेटे अभी नए नए गुरुकुल से लौटे, अभी उन्हें बहुत सी व्यवहारिक बातें पूछनी होंगी, ताछनी होंगी, तुम्हारा मार्गदर्शन सहाय जरूरी हो तो पीठ करके घर की तरफ रुके रहना कि ठीक है, कुछ पूछना हो तो पूछ पाछ लो। फिर 75 वर्ष के तुम जब हो जाओगे तो सब छोड़कर जंगल चले जाना। वे शेष अंतिम 25 वर्ष मृत्यु की तैयारी, उसी का नाम संन्यास था। 25 वर्ष जीवन के प्रारंभ में जीवन की तैयारी और जीवन के अंत में 25 वर्ष मृत्यु की तैयारी। आज दुनिया से मृत्यु की तैयारी खो गई, लोग मृत्यु की बात ही नहीं करना चाहते, मृत्यु की बात से ही मन तिलमिला जाता है, मन डरने लगता है। रास्ते पर निकलती अर्थी देखकर तुम बेचैन नहीं हो गए? वह बेचैनी इस बात की खबर है कि तुम्हें याद आ रही, आज नहीं कल मेरी अर्थी भी उठेगी। यही लोग जो दूसरे को लिए जा रहे हैं, कल मुझे भी मरकट पहुंचाएंगे। आज कोई और चढ़ा है चिता पर, कल मैं भी चढ़ूंगा। ऐसा अगर तुम्हें दिखाई पड़ जाए तो क्रांति हो जाए, मगर हम बड़े चालबाज हैं, हम इसको छिपा लेते, हम धुआं खड़ा कर लेते। अब कबीर तुम धुआं खड़ा कर रहे हो, तुम कहते हो ज्योति मेरी बहन का देहांत हो गया, मैं बहुत दुख में हूं, बहुत परेशानी में हूं, सालों से प्रेम एवं ममत्व होने के कारण रोम रोम में याद सताती। तुम झुटला रहे हो, तुम अपनी सारी बात को ज्योति पर आरोपित कर रहे हो कि न तू गई होती न मैं दुखी होता। तू क्या चली गई, मुझे दुख में छोड़ गई। तुम ये बात भुलाने की कोशिश कर रहे हो कि दुख ज्योति के जाने का नहीं है, दुख इस बात का है कि जाना पड़ेगा, दुख इस बात का है कि ये ज्योति सजग कर गई तुम्हें कि मौत आती है, मेरी आ गई तुम्हारी भी आती होगी। देखो मेरी आ गई और मैं तो तुमसे कम उम्र थी। अब तुम इसको झुठलाओ मत। तुम कहते हो कि प्रवचन सुनता हूं, ध्यान करता हूं, थोड़ी शांति अनुभव होती है। वह शांति नहीं, शांत बना है। प्रवचन सुनने में भूल जाते होगे, याद ना रह जाती होगी, यह शांति नहीं, यह तो विस्मरण है। यह तो वैसे ही है जैसे कोई सिनेमा में जाते बैठ गया तो दो घड़ी के लिए उलझ गया सिनेमा की कहानी में, तो अपनी कहानी भूल गई कि पढ़ने लगा कोई उपन्यास, जासूसी, सनसनीखेज, कि लग गया चित्त उसमें तो अपनी चिंता भूल गई, कि पीली शराब, कि डूब गए थोड़ी मूर्छा में, कि भूल गई अपनी आपदा भी। मगर कितनी देर फिर लौट आओगे, आना ही पड़ेगा। नहीं, इस तरह सांत्वना देने से कुछ भी ना होगा। जागो, जागने से शांति मिलेगी। स्वीकार करो कि मौत है और स्वीकार करो कि सब संयोग यहां नदी नाव संयोग है, अभी है अभी भी बिछड़ जाएंगे। कितनी देर हमारा साथ है कुछ भी कहा नहीं जा सकता, दूसरे ही क्षण रास्ते अलग हो जाएंगे। तुम इस ज्योति के साथ, तुम्हारी बहन के साथ कितने दिन से थे? तुम्हारे पहले भी तुम्हारी बहन रही होगी, तुम भी रहे होगे, जन्मों जन्मों में कभी मिलना ना हुआ था, अनंत जन्मों की कथा है। फिर थोड़ी देर राह पर साथ हो लिए दो राहगीर, तुम किसी और राह से आए, मैं किसी और राह से आया, घड़ी भर को साथ हो लिया, संयोग बस। फिर मेरी राह अलग हो गई, तुम्हारी राह अलग हो गई, ना तो कभी पहले साथ थी न शायद अब दोबारा कभी मिलना हो। मगर ये थोड़े से क्षण जो राह पर साथ साथ गुजरे, इनको इतना मूल्य मत दो, इनका कोई भी मूल्य नहीं। स्मरण रखो नदी नाव संयोग, स्मरण रखो जैसे वृक्ष पर एक ही रात बहुत से पसेरियों पक्षियों ने बसेरा ले लिया, सुबह भी उड़ गए, स्मरण रखो कि रात सराय में रुके, सुबह भी विदा हो गए, रात थे साथ तो परिचय भी बनाए, अपरिचितों के साथ बैठकर ताश भी खेले, शतरंज भी फैलाई, गपशप भी की, सुबह भी नमस्कार किया और विदा हो गए। बस इससे ज्यादा मूल इस जीवन के संबंधों का नहीं, लेकिन चोट लगती है गलत धारणाओं के कारण, चोट लगती है हमारे अहंकार को कि मैं कुछ भी ना कर सका, कि मेरी बहन मर गई और मैं बचा ना सका, तो मेरा बल क्या, तो मेरी सामर्थ्य क्या, तो मैं कौन हूं। तुम तिल मिला गए, चाहता हूं पुष्प यह गुलदान का मेरे न मुरझाए कभी, देता रहे सौरभ सदा अक्षुण इसका रूप हो, पर यह कहां संभव कि जो है आज वह कल को कहां, उत्पत्ति यदि अवसान निश्चित आदि है तो अंत भी है, यह व्यवस्था जो हमारा हो उसे हम रख न पाए, सामने अवसान हो प्रिय वस्तु का हम दिवस दर्शक रह आए, नियम शाश्वत आदि के अवसान के अपवाद निश्चय ही असंभव, सूल सा यह ज्ञान चुभता मर्म में मन विकल होता, प्राप्तियां उपलब्धियां क्या दीन मानव की कि जो अवसान क्रम से आदि क्रम से हार जाता, काल के रथ को न पर भर रोक पाता, क्या अहम मेरा कि जिसकी तुष्टि मैं ही न कर पाता, अर्चन वहां कठिनाई वहां तुम्हारी ही नहीं कबीर सभी की, प्रत्येक की प्राप्तियां उपलब्धियां क्या दीन मानव की कि जो अवसान क्रम से आदि क्रम से हार जाता, काल के रथ को न पल भर रोक पाता, इतने हम असहाय, इतने हम निर्बल, मगर हमारी अकड़ है गहरी, जब तक सब ठीक चलता है तब तक तो अकड़ बनी रहती, जब चीजें बिखरती हैं तो अड़चन आती, इसको तुम सौभाग्य बनाओ, यह जो घड़ी घटी इसे रो रो कर बुलाने की चेष्टा ना करो, समय घाव भर देता है, इसके पहले कि घाव भर जाए जागो, अभी घाव हरा है, इस हरे घाव का लाभ ले लो, समझो कि जो हुआ वही होना है, देर अबेर की बात है। एक सुबह बुद्ध गांव में आए, उस गांव में एक विधवा स्त्री का इकलौता बेटा मर गया, वही उसका सहारा, वही उसकी आंख का तारा, वही सब कुछ था, पति तो चल बसा था, इसी बेटे के सहारे जी रही थी, उसकी पीड़ा तुम समझो, पागल हो गई, बेटे की लाश को लेके गांव में घूमने लगी, वैद्यों के चिकित्सकों के द्वार द्वार, तंत्रिकों मांत्रिकों के द्वार द्वार, मगर कौन जगाए उसे, सब तंत्र सब मंत्र सब ज्योतिष सब वैद्य सब चिकित्सक मृत्यु के सामने असहाय, किसी ने कहा पागल औरत, अब इस लाश को ढोने रखने से कुछ भी लाभ नहीं, अब तो व्यर्थ ही दीवानी हो रही, जो हुआ हुआ मृत्यु तो हो गई, अब तो कोई चमत्कार ही हो तो ये बस सकता है, उस स्त्री को तो जैसे डूबते को तिनके का सहारा, उसने कहा चमत्कार, क्या कोई चमत्कार हो सकता है, उस आदमी ने ये सोच के कहा भी ना था, उसने तो यूं ही बात में ही बात कर दी थी, बात में बात निकल गई थी, कह दिया था कि कोई चमत्कार हो तो ही बस सकता है, चमत्कार नहीं होते, मगर इस स्त्री पीछे पड़ गई उसके कि चमत्कार हो सकता है तो बोलो कहां कैसे। पिंड छुड़ाने को उसने कहा गांव में गौतम बुद्ध का आगमन हुआ, तुम उनके पास जा, वे तो भगवान है, वे तो परम दान को उपलब्ध है, उनके चरणों में ही रख दे इस लाश को, अगर चमत्कार हो सकता है तो वही हो सकता है और कहीं भी नहीं। भागी स्त्री जाके लाश को बुद्ध के चरणों में रख दी और मालूम बुद्ध ने क्या कहा। बुद्ध ने कहा ठीक, तो तू चाहती है कि तेरा बेटा वापस जिंदा हो जाए। उसने कहा बस यही चाहती हूं और कुछ भी नहीं चाहती, इतना ही कर दो, अनुकंपा करो, मुझे दिन पर दया करो। बुद्ध ने कहा होगा, जरूर होगा, लेकिन कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। तू जा गांव में और किसी भी घर से मेथी के थोड़े से दाने मांग ला। वह गांव तो मेथी की ही खेती करता था। उस स्त्री ने कहा ये भी कोई शर्त हुई, सारा गांव मेथी ही मेथी से भरा, ये तो हमारी खेती, अभी ले आती हूँ। बुद्ध ने कहा लेकिन ख्याल रख, उसके पीछे एक शर्त और है, मेथी उस घर से लाना जिसके घर में कभी कोई मृत्यु ना घटी, तो चमत्कार हो जाएगा, बस मेथी के चार दाने काम कर जाएंगे। वो भागी स्त्री, पागलपन में आदमी तो कुछ भी भरोसा कर लेता, होश में ना हो तो गणित बिठाने का समय भी कहां पाता है, और फिर मन जब मानना ही चाहता हो तो सब तर्कों के विपरीत मान लेता है। छोटी सी बात थी, साफ हो गई थी बात वही कि ऐसा कौन सा घर होगा जहां मृत्यु ना हुई हो, लेकिन कौन जाने, आशाएं बड़े सपनों में डूब जाती। वो भागी, एक द्वार खटखटाया, लोगों ने कहा जितनी मेथी चाहिए ले जा, बोरे से बोरे भरवा दे, गाड़ियों से गाड़ियां भरवा दे, मेथी ही मेथी, गांव मेथी की ही खेती करता, तेरे घर भी मेथी है तो क्यों दूसरे घरों में मांगती फिरती। उसने कहा लेकिन ऐसे घर की मेथी चाहिए जिसके घर कोई मरा ना हो। सांझ होते होते बात साफ हो गई, गांव में एक भी घर ऐसा नहीं है जहां कोई मरा ना हो। और ये बात साफ होते होते कुछ और भी साफ हो गया। जब वे लौटी सांझ, बुद्ध ने कहा तू ले आई मेथी के चार दाने। वह स्त्री हंसने लगी, वह बुद्ध के चरणों पर गिर पड़े। उसने कहा मुझे दीक्षा दो, इसके पहले कि मेरी मौत आए मैं कुछ कर लू, मैं जीवन का कुछ अर्थ जान लू, मैं जीवन का भी प्राय पहचान लू। बेटा तो गया, मेरा जाना भी ज्यादा दोष नहीं, और आपने ठीक ही किया कि मुझे भेज दिया गांव की यात्रा पर। एक एक घर में पूछ के मुझे पता चल गया कि मृत्यु तो सुनिश्चित है, सभी घर में हुई है, सभी घरों में होती रहेगी, हम मौत के द्वार पर ही खड़े। तो मेरा बेटा आज गया, कल मैं जाऊंगी, इसके पहले कि मैं जाऊं मेरा बेटा तो गया, बिना कुछ जाने गया, मैं बिना कुछ जाने नहीं जाना चाहती हूं। कबीर यही मैं तुमसे कहता हूं, मौत तो होती ही है, किसी की आज किसी की कल, आज बहन कल भाई, हम सब विदा होने को है। यह घर नहीं सराय, रोने में समय मत कमाओ, आंसू पोंछ डालो, क्योंकि आंसू से भरी आंखें देखने में समर्थ न हो सकेंगी। आंसू बिल्कुल पोंछ डालो, ये देखने की घड़ी है, मृत्यु से बड़ी महत्वपूर्ण कोई घड़ी नहीं है। और जब तुम्हारा कोई प्यारा मर जाए तब तो बड़ा बहुमूल्य अवसर है, क्योंकि प्यारे का अर्थ होता है जो तुम्हारे बहुत करीब था, हृदय के बहुत करीब था। प्यारे का अर्थ होता है जिसकी मृत्यु तुम्हें अपनी मृत्यु जैसी मालूम होती। यही तो मौका है, यही तो ध्यान में प्रवेश का मौका है। और मुझसे तुम सांत्वना न मांगो, मैं तुम्हें सत्य ही दे सकता हूं। और सत्य यह है कि कबीर तुम्हें भी मरना होगा, मुझे भी मरना होगा, सभी को मरना होगा। मरने के पहले लेकिन एक उपाय है, पास हम अपनी चेतना से थोड़ा परिचय बना लें, थोड़ा हमारे भीतर जो अमृत का दिया चल रहा है उसका अनुभव हो जाए, फिर मृत्यु नहीं होती, फिर देह गिर जाती है और हम और लंबी यात्रा पर निकल जाते, फिर केवल परिधान बदलते, अन्य माने शरीर, फिर शरीर के मरने से वो जो भीतर छिपा है वह नहीं मरता है, और जिस दिन तुम अपने अमृत को देख पाओगे उसी दिन तुम्हें सबके भीतर अमृत दिखाई पड़ जाएगा। न तुम्हारी बहन मरी है, न कोई कभी मर सकता है। अब तुम समय ये दो विरोधाभासी वक्तव्य दे रहा हूं, एक सभी मरते, सभी को मरना पड़ेगा, जो देह ग्रस्त है मृत्यु के सिवाय वे कुछ भी अनुभव नहीं कर सकते, और दूसरा कोई ना कभी मरा है और कोई ना कभी मर सकता है, लेकिन यह तो उनका अनुभव है जिन्होंने अमृत की पहचान की हो, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया हो। चाहता हूं पुष्प यह गुलदान का मेरे न मुरझाए कभी, देता रहे सौरभ सदा अक्षुण इसका रूप हो, पर यह कहां संभव कि जो है आज वह कल को कहां, उत्पत्ति यदि अवसान निश्चित आदि है तो अंत भी है, देह तो बस फूल है। देखते ना जब कोई मर जाता और हम उसे जलाते, फिर तीसरे दिन हम इकट्ठा करने जाते तो कहते फूल इकट्ठे करने जा रहे, क्यों कहते हैं फूल इकट्ठे करने जा रहे, बस फूल जैसा ही सब है यहां क्षणभंगुर, प्यारा शब्द है फूल, क्षणभंगुरता का प्रतीक है फूल, हड्डियां इकट्ठी करने जाते कहते फूल इकट्ठे करने जा रहे, मगर अब तुम कह रहे हो कि फूल इकट्ठे करने जा रहे हैं, काश जिसकी हड्डियां हैं उसने ही जाग कर देख लिया होता कि ये सब फूल है, अभी है अभी कुमला जाएंगे, सुबह है सांझ पुखड़ियां चढ़ जाएंगी, तो शायद कब्र न बनती समाधि बनती, तो शायद मृत्यु तो होने ही वाली थी लेकिन पितर को ही अमृत को जानता हुआ विदा होता। उस क्रांति की तलाश करो कबीर, मुझसे सांत्वना न खोजो, मैं सत्य ही दे सकता हूं। यह व्यवस्था जो हमारा हो उसे हम रख न पाए, सामने अवसान हो प्रिय वस्तु का हम विवश दर्शक रहे आए, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूं, अपनों को भी नहीं बचा पाते, अपने को ही नहीं बचा पाएंगे, नियम शाश्वत आदि के अवसान के अपवाद निश्चय ही असंभव, सूल सा यह ज्ञान चुभता मर्म में मन विकल होता, मैं तुम्हारा दुख समझता, तुम्हारी पीड़ा समझता, तुम्हारे मन की विकलता समझता, लेकिन यह सब स्वाभाविक है। जागो, मृत्यु के क्षण से, प्रियजन की मृत्यु के क्षण से जागने का और कोई शुभ अवसर नहीं, लेकिन हम जागते नहीं, हम नए नए सपनों में खो जाते। एक मित्र कुछ दिन पहले आए, पत्नी उनकी चल बसी, साधारण गैर पढ़े लिखे व्यक्ति भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, मगर जहां तक मनुष्य के आंतरिक अज्ञान का संबंध है कुछ भेद नहीं होता, जो पत्थर तोड़ता है राह पर उसमें और वो जो सुप्रीम कोर्ट में बैठ के निर्णय देता है उसमें कुछ भेद नहीं होता, मूड से मूड में और तथाकथित पंडित में जरा भी अंतर नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से रोने लगे विवल बच्चे की भांति, पत्नी को मरे भी तो साल हो चुकी मगर है कि पीड़ा नहीं जाती, दिल्ली से चल के इतनी दूर आए थे, मुझसे सिर्फ यही पूछ ले कि क्या एक बात का मुझे भरोसा दिला सकते कि कभी भविष्य में किसी और जन्म में मेरी पत्नी से मेरा मिलना होगा कि नहीं। और एक प्रार्थना है कहने लगी, एक बार उसका दर्शन करा दे, स्वप्न में ही सही, एक बार उसे फिर देख लो कैसा हमारा मोह है, फिर तो जैसे भूल गए उससे बात करते समय कि मैं भी वहां, याद करने लगे कि हमने कैसे दिन बिताए, कैसे सुख के दिन, हमने सारी दुनिया की यात्रा दो बार की, हम पेरिस गए, हम लंदन गए, हम न्यूयॉर्क गए, हम पेकिंग गए, एक क्षण को तो भूल ही गए कि पत्नी मर चुकी है, पेरिस का वर्णन करने लगे, लंदन का, कैसे हम ठहरे, कहां क्या घटना घटी, मैं देखता था उनको और सोचता था कि बच्चों में और बूढ़ों में जरा भी भेद नहीं, बूढ़े हो गए, अब कुल एक साल और बचा है रिटायर होने को, ये सब हमारे मन की जालसाजी है। मैंने उनको बार बार कहा कि इस जन्म के पहले इस पत्नी से कभी मिलना हुआ था, नहीं मुझे तो कुछ जन्म के पहले की याद ही नहीं, तो मैंने कहा अगले जन्म में तुम्हें पत्नी की याद रहेगी, पिछले जन्म में कोई तुम्हारी पत्नी रही होगी, हाँ जरूर रही ही होगी, याद कुछ है, पिछले जन्म में भी पत्नी मरी होगी, पिछले जन्म में भी तुमने किसी से जाके कहा होगा किसी पत्नी से फिर दोबारा मिलना हो जाए, याद है कुछ, आज तुम कह रहे हो कल मर जाओगे, याद रह जाएगी, छोड़ो मरने की बात, रात जब सो जाओगे आज तब याद रह जाएगी, उनकी आंखें गीली हो आई, उन्होंने कहा वही तो मेरा दुख है, दो साल हो गए सपने में भी नहीं देखा, रात रोज सो जाते हो तब भी याद भूल जाती है, तो जब मरोगे मृत्यु जैसी बड़ी घटना घटेगी, देह भी छूट जाएगी, मन भी छूट जाएगा, तब तुम्हें याद रह जाएगी पत्नी की, कहीं मिल भी जाएगी भूल चूक, पहचान पाओगे, क्यों व्यर्थ की बातों में पड़े हो, और कुछ कमी थी इस जन्म के पहले जब ये पत्नी तुम्हारी पत्नी ना थी, कभी कमी थी कुछ, आगे भी कुछ कमी होगी, और ये पत्नी की मिल गई थी ये भी संयोग की था, कहने लगे आपको कैसे पता चला संयोग, तो मुझे आपकी कथा का कुछ पता नहीं है, मगर सभी संयोग थे, मैंने उन्हें एक यहूदी लेखक की कहानी बताई, उसके जीवन की घटना है, वह एक स्टेशन पर उतरा, चारों तरफ देखा कुली नहीं था, सामान ज्यादा था, उसके पास ही एक और स्त्री उतरी थी बगल के डब्बे से, उसके पास बिल्कुल सामान न था, भली महिला, उसने कहा कि आप चिंता तुर देखते हैं, कुली कोई दिखाई पड़ता नहीं, रात सर्द है, बर्फ पड़ रही, लाइए कुछ सामान मैं आपका बटा लूं जो भी बन सके, तो कुछ दो झोले उसने भी ले लिए, दोनों चले स्टेशन की तरफ, अब जिसने झोले लिए थे उससे बात भी होने लगी, बाहर आए पहचान हो गई, तब तक बातचीत भी हुई, मित्रों की बात चली, कहां से आई क्या हुआ, टैक्सी में बैठने के पहले रात सर्द थी, दोनों ने बैठ के होटल में काफी पी, थोड़ी गर्मा ले अपने देहों को, फिर तब तक इतनी पहचान हो गई थी, तब दो टैक्सी क्यों करनी, एक ही टैक्सी कर ली, फिर पहचान बढ़ती ही चली गई, टैक्सी में कोई घंटे भर की यात्रा थी, दोनों पास बैठे रहे, और भी मैत्री घनी हो गई, फिर होटल में सोचा कि दो कमरे क्यों ले, एक ही ले ले, फिर ऐसे विवाह हुआ, उस लेखक ने लिखा है ऐसे मेरे पिता और मेरी माँ का मिलना हुआ, संयोग की ही बात थी कि उस दिन कोई कुली नहीं था, बस बस उस ना समझ कुली की वजह से ये उपद्रव हुआ। तुम भी देखना कैसे तुम्हें अपनी पत्नी मिल गई। एक ही स्कूल में पढ़ते थे, कि बस्ता टांग लिए एक ही स्कूल की तरफ रोज रोज जाते थे, कि संयोग की बात वही भी पड़ोस में रहती थी। हमारी दौड़ी कितनी है, थोड़ी कार वगैरह युवकों के पास हो गई, थोड़ी दौड़ ज्यादा है, दूसरे मोहल्ले पे चले जाते, तो मोहल्ले में होने वाली थी। संयोग एक है सब मिलना, वे तो बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा आप कहते क्या, बात सच है, मेरा मिलना उसका संयोग ही था। हम ऐसे ही एक कॉन्फ्रेंस में मिले थे और फिर बात बन गई कि बात बिगड़ गई, एक ही है मतलब। अब रो रहे हैं, अब सोच रहे हैं आगे फिर मिलना इसी से हो जाए, और अब सोच रहे हैं काश वो होती तो कैसा अच्छा होता। जो न कल जाती हिमानी विरह दिनकर की कला से, आज इस ज्वाला तरीके हिम जड़े पतवार होते। हास और सुख से भरे आनंद का व्यापार करने, प्राण जलनिधि में प्रणय के पोत चलते पार होते। पलक के प्यासे चषक में भर मिलन की माधवी को, स्निग्ध चंद्रा सौ पिए से नयन ये रत्नार होते। उंगलियां जो उलझ जाती नीलमल के कौन पहने, बंक बरुनी के कसे मुखरित सुरीले तार होते। सिहर कर अंबर उतरता अंक में भरती उन्हें जो, तो सजली मोतियों के कंठ में भी दुहार होते। छाए हिमकर चांदनी का तान तारा जड़ित आतप, आज इस ज्वाला भरी के मान और मनोहर होते। और फिर कल्पना है कैसा होता कि ऐसा होता कि ऐसा होता। मत को कल्पना, जीवन जैसा है वैसा है, उसे वैसा ही जान, उसकी नग्नता में तथ्यों को झुटलाओ मत, तथ्यों को कल्पना के घूंघट मत पहनाओ, तथ्यों को बुरके मत उड़ाओ। मृत्यु है, इसे तुम कितना ही श्रृंगार करो और कितना ही सजाओ, तुम झुटला ना सकोगे। इसे जुटलाने में जितने तुम सफल हो जाओगे, उतने ही तुमने जीवन को चूकने का उपाय कर लिया। कबीर, धन्यवाद करो अपनी बहन का, ज्योति का। गई अंधेरा छोड़ गई पीछे ज्योति, अब इस अंधेरे में अपनी ज्योति की तलाश करो। वही ज्योति भीतर जलेगी तो ही शांति, तो ही सत्य, तो ही मुक्ति।
आज की ध्यान विधि एक सूत्र है प्रयोग करने के लिए। इस सूत्र को हमने ध्यान सूत्र पुस्तक से लिया है। क्या करें विदा के दुख से बचने के लिए? ओशो कहते हैं, नियति का विचार यह कहता है कि आप कुछ करें मत। आप कर नहीं सकते कुछ, आप सिर्फ राजी हो जाएं। इसका प्रयोग करके देखें। अशांति आई है बहुत बार और आपने शांत होने की कोशिश की है और अब तक नहीं हो पाए हैं। इस दूसरे प्रयोग को करके देखें। अशांति आए, स्वीकार कर लें कि मैं अशांत हूं। मैं आदमी ऐसा हूं कि मुझे अशांति मिलेगी। मैंने ऐसा कर्म किया होगा कि मुझे अशांति मिल रही है। मेरी नियति में अशांति का ही पात्र हूं। इसे स्वीकार कर लें। इस अशांति से रत्ती मात्र संघर्ष न करें। क्या होगा, जैसे ही आप स्वीकार करते हैं अशांति तिरोहित होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि स्वीकार का भाव ही उसकी मृत्यु बन जाता है। जिस चीज को हम स्वीकार कर लेते हैं उसके हम पार हो जाते हैं। अशांत हैं, अशांति को स्वीकार कर लें, लड़े मत, फिर देखें क्या होता है। स्वीकृति क्रांतिकारी तत्व है और जिस बात को हम स्वीकार कर लेते हैं उससे छुटकारा उसी क्षण शुरू हो जाता है। ओशो कहते हैं, हमारा उपद्रव क्या है? सुख को हम पकड़ते हैं, दुख को हम पकड़ते नहीं। दुख से हम बचना चाहते हैं, सुख कहीं छूट न जाए इस कोशिश में होते हैं। और हमें पता नहीं कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जब हम सुख को पकड़ते हैं तब हमने दुख को पकड़ लिया। वह उसी का छिपा हुआ पहलू है। या तो दोनों को छोड़ दें या दोनों के लिए राजी हो जाएं। दोनों हालत में आपके जीवन में क्रांति हो जाएगी। आज का प्रवचन मरो है जोगी मरो, प्रवचन नंबर 12 प्रश्न संख्या 4 से लिया गया है। प्रोग्राम का म्यूजिक म्यूजिक फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ओशो से लिया गया है।
आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। तो मित्रों, यदि सचमुच जीने की तमन्ना है तो मरने का इरादा तो करना ही पड़ेगा। मरना यानी आत्म रूपांतरण की प्रक्रिया, अपने अहंकार को विदा, अपने मन को विदा। और इस आत्म रूपांतरण में ओशो के प्रवचन, ओशो की ध्यान विधियां व ओशो के ध्यान केंद्र उपलब्ध हैं आप सभी के लिए। आपको आमंत्रण है ओशो की तरफ से, एक प्रेम भरा आमंत्रण अमृत की दिशा की ओर, और ओशो तो हमारे साथ हैं ही।
जैसा कि ओशो कहते थे, आप सभी के भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम। तो इसी भाव दशा में हमारा नमन स्वीकार करें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।
तुम मेरे शरीर को जाके अर्थी पर चढ़ा के जला देना, लेकिन अगर किसी ने हृदय से भर के मुझसे प्रश्न पूछा तो उसे उत्तर मिल जाए, क्योंकि मैं तो हूं, मैं तो रहूंगा, मुझे जलाने का कोई उपाय नहीं और मुझे मिटाने का कोई उपाय नहीं।
Hey, Joe, hey. सको समर्पित है।
Yeah.